السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج رات سے انشاءاللہ تعالیٰ پورے سال کی جو بہترین راتیں ہیں ان میں داخل ہونے جا رہے ہیں. یہ عشرہ بڑا مبارک عشرہ ہے، بڑا بابرکت عشرہ ہے. ابھی تک اگر پورے رمضان میں جو گزر چکا ہے ہم بہت زیادہ محنت نہیں بھی کر سکے، تو اب وہ وقت ہے کہ ہم خوب پورا زور لگا دیں، کیونکہ اب رمضان جا رہا ہے جس کی ان 20 دنوں میں رفتار تھوڑی سلو رہی. یہ اب راتیں اللہ تعالیٰ نے دے کے اس امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جو اپنی بخشش نہیں کروا سکا ابھی تک، اس کے پاس بھی چانس ہے. جو ابھی تک بہت محنت نہیں کر سکا اس کے پاس بھی چانس ہے. جو نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکا اس کے پاس بھی چانس ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیام اللیل کرے لیلت القدر میں، من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلت القدر میں قیام کر لیا ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لہٰذا ابھی بھی چانس ہے، اور یہ قیمتی راتیں ہیں. ان قیمتی راتوں کے لیے خاص طور پہ ہم تیاری کریں گے ان راتوں میں جاگنے کی. اس کے لیے اپنے دن کو بہتر کریں گے. دن کو بہتر کیسے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا نہ تھکا دیں کہ رات کو جاگنا مشکل ہو جائے. دن کے وقت تھوڑا آرام کر لیجئے تاکہ رات میں جاگنا آسان ہو جائے، کیونکہ دن کے وقت اگر آپ تھوڑا سا سو جاتے ہیں تو اس سے رات میں ویسے بھی اس طرح سے نیند جلدی نہیں آتی. تو ان کو قیمتی راتیں سمجھیں کہ یہ میرے پاس اب ایک چانس ہے، اور یہ میری پوری پچھلی زندگی کو دھونے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. سفیان الثوری فرماتے ہیں، جس نے اپنی عمر کے ساتھ کھیلا، یعنی اپنی عمر کو گنوا دیا، اس نے اپنی کھیتی کے دن ضائع کر دیے. اور جس نے اپنی کھیتی کے دن ضائع کر دیے وہ اپنی فصل کی کٹائی کے دن افسوس کرے گا. تو یہ کھیتی کے دن ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا. اگر ان کو ضائع کر دیا تو پھر اس دن پچھتائیں گے جس دن کھیتی کٹنے کا دن ہوگا. اسی طرح امام ابن القیم فرماتے ہیں، اس دنیا سے جب جاؤ گے تو ایک عجیب واقعہ ہوگا. یا تو تم ایک قید خانے سے چھوٹ جاؤ گے اور اپنے سامنے کھلی فضا پاؤ گے، اللہم اجعلنا منہم، یا ابھی تم آزاد پھر رہے تھے اور یہاں سے نکلتے ایک قید خانے میں چلے جاؤ گے. تو ایک قید لازمی ہے، خواہ یہاں کاٹ لو یا وہاں. یہاں پہ جو قید ہے وہ عمل کی ہے اور بندگی کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اور چند دنوں کی بات ہے. مگر وہاں کی قید بے بسی کی اور جہنم کی قید ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والے دنوں کی قید ہے. اب انسان خود فیصلہ کر لے کہ یہ قید کہاں کاٹنی ہے، یہاں یا وہاں. تو اب یہ راتیں بھی دیکھیں، گنتی کی چند ایک راتیں ہیں جس میں ہم جا کر اتنی عبادت کا اجر لے سکتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ. تو اس کو معمولی نہیں جاننا. اس کے لیے اگر کسی کو چھٹی لینی پڑے اپنے ورک سے تو بھی ورتھ ہے. آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی جگہ پہ آپ کو $1,000,000 ملنا ہے تو آپ اس کے لیے اپنی جاب سے بھی چھٹی لینے پہ تیار ہو جاتے ہیں. ये तो मिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा है। इसका बदला तो जन्नत हो सकती है, क्योंकि इतनी ज्यादा इबादत हम वैसे तो नहीं कर सकते। तो लिहाजा ऐसी रात देके अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ा इनाम दिया, एक अपॉर्चुनिटी दे दी, एक चांस मेरे पास आ गया। तो इन रातों के लिए खसूसी जो हम तैयारी करेंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज, और ये भी कि इन रातों में हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। प्रायोरिटी कयामुल लैल, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयाम करना इन रातों में। तो इसके लिए भी हम अपने आप को इंशाल्लाह ताला तैयार करेंगे। और इन रातों में और इन दिनों में जो जा रहे हैं, सारा दिन में हमने सबसे ज्यादा जो तवज्जो देनी है वो ये है कि हम अल्लाह ताला का जिक्र अपनी जुबान पर जारी रखें, जो सबसे ही आसान इबादत है, सबसे आसान। अल्लाह का जिक्र करने में कोई मुशक्कत नहीं है, चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप किसी जॉब पे हैं, चाहे आप घर के कामों में लगे हुए हैं, चाहे आप सफाई कर रहे हैं या आप कोई और किसी काम में मशगूल हैं, जुबान अल्लाह का जिक्र कर सकती है, बशर्ते कि वो दूसरी बातों से जरा खामोश रहे तो जिक्र हो सकता है। इमाम इब्ने कय्यिम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है, फरमाते हैं अगर तुम सुन लो फरिश्तों के कलमों की चरचराहट जब वो जिक्र करने वालों में तुम्हारा भी नाम लिखते हैं। सुभान अल्लाह, कि जब फरिश्ते जिक्र करने वालों में, जाकिरीन और जाकिरात में मेरा और आपका नाम लिखते हो ना, अगर हम सुन लेना फरिश्तों के कलमों की चरचराहट, तो कहते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की तड़प में तुम जान दे दो, इतनी तुम्हें तड़प लग जाए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, के इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मर्तबा है, इतना बड़ा इंसान को दर्जा मिल सकता है इस जिक्र करने से, इसके तक पहुंचने से, कि एक रिवायत में इमाम इब्न कय्यम फरमाते हैं कि बंदा पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन उसको पता चलेगा कि उसकी बदजुमानी की वजह से उसकी सारी नेकियों का खात्मा हो गया, और पहाड़ों के बराबर गुनाह लाएगा, मगर जिक्र इलाही की कसरत की वजह से, यानी उसकी जुबान ने जो जिक्र किया उसकी वजह से वो सारे गुनाह ढा दिए जाएंगे। तो यानी अगर जिक्र ज्यादा हुआ ना तो गुनाह भी मिट जाएंगे, लेकिन अगर बदजुबानी इसकी जगह हुई तो पहाड़ों जैसी नेकियां भी मिट जाएंगी। तो बेहतर नहीं कि फिर हम कम बोलें और जिक्र ज्यादा करें? कम से कम इन दिनों में हम अपनी जुबान की बहुत ज्यादा हिफाजत करें। सुफियान सौरी लोगों से मुखातिब होके फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी मजलिस में ऐसा शख्स बैठा हो जो तुम्हारी बातें जाके बादशाह तक पहुंचाता हो, तो क्या कोई ऐसी बात करोगे जो बादशाह को नाराज करने वाली हो? लोगों ने कहा कभी भी नहीं करेंगे। जैसे आपको पता चल जाए कि अल्लाह ना करेगा कहीं FBI का कोई बंदा बैठा हुआ है, कहीं और कोई सीक्रेट सर्विस के कोई एजेंट्स बैठे हुए हैं, कोई जासूस बैठे हुए हैं, तो आप कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो हुकूमत के खिलाफ होगी, या डर के रहेंगे ना, कितना लोग डरते हैं इस बात से। तो इमाम साहब ने फरमाया याद रखो तुम्हारे दरमियान फरिश्ते मौजूद रहते हैं जो तुम्हारी बातें अल्लाह ताला तक पहुंचाते हैं, तो तुम फिर उसके नाराज करने वाली बातें कैसे मुंह से निकाल सकते हो? अल्लाह अकबर। और याद रखें जब कयामत के दिन ना लोगों पर उनके आमाल के अजर के बारे में जो लिखा गया होगा ना, उनके आमाल का अजर, उसके बारे में पर्दा हटाया जाएगा, तो जिक्र से बढ़ के सवाब वाला अमल कोई भी नहीं होगा, इतना बड़ा इसका सवाब होगा। उस वक्त जब लोग ये देखेंगे ना, तो उस वक्त कुछ लोग इतने गमगीन हो जाएंगे और कहेंगे हमारे लिए जिक्र से ज्यादा आसान तो कोई चीज थी ही नहीं, फिर हमने क्यों ना जिक्र की कसरत की। तब उनको ख्याल आएगा कि काश हम दुनिया के अंदर इतना जिक्र कर लेते, इतनी कसरत करते, और आज हमें भी इतना बड़ा अजर मिल जाता, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान काम था, ये तो हम बड़े आराम से कर सकते थे, तो फिर क्यों नहीं किया? तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जुबान को सारा दिन, देखिए सुभान अल्लाह कहना कौन सा मुश्किल है, सारा दिन अगर सुभान अल्लाह ही कहते रहे, सारा दिन अगर अस्तगफिरुल्लाह ही कहते रहे, हमारे गुनाह इतने ज्यादा हैं, हमें तो चाहिए कि हर वक्त हम अस्तगफिरुल्लाह कहते रहें। हम बस ये सोचते हैं कि थोड़ा इतने से गुनाह पे अल्लाह ताला पकड़ लेगा, थोड़ा इतने से गुनाह पे अल्लाह ताला ने जहन्नुम में डाल देना, और ये सोच के गुनाह करते जाते और गुनाह की संगीनी को नहीं समझते। हालांकि देखें सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, हम जब ये कहते हैं ना कि थोड़ा इतनी सी बात पे ही होगा, कि हमने अल्लाह ताला के फैसले को अपने हाथ में लिया हुआ है, हमें पता है कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ पे जन्नत में डालना है या किस पे जहन्नुम में डालना, किस गुनाह पे वो पकड़ लेगा और किस गुनाह को छोड़ देगा, हमें तो नहीं पता। आप देखें कि आप सबने वो रिवायत सुनी होगी कि 99 बंदों का जो कातिल था, एंड में क्या हुआ था जब उसने तौबा की थी, सबको वो हदीस पता है। 99 का उसने कत्ल किया था, और उसके बाद एंड में 100वां कत्ल भी कर दिया था, क्योंकि एक इबादत गुजार ने उसको कहा तेरी तौबा कभी नहीं कबूल होनी, उसने उसको भी कत्ल कर दिया। लेकिन उसकी तौबा इतनी सच्ची थी, ऐसी सच्ची तौबा थी कि जब उसको एक इबादत गुजार ने कहा कि फलां बस्ती में चला जा, वहां तेरी तौबा कबूल होगी, उसके अंदर इतना रिग्रेट था, इतना पछतावा था, इतना वो अपने अंदर ही अंदर इस चीज में घुल रहा था, उसने वो सफर शुरू कर दिया, रास्ते में ही उसको मौत आ गई। अब दोनों तरफ के फरिश्ते आ गए, रहमत के भी और अजाब के भी। रहमत के फरिश्ते कह रहे थे कि देखो इसने तौबा कर ली, लिहाजा हम इसकी रूह लेकर जाएंगे, और अजाब के कहने लगे कि ये देखो तौबा की थी लेकिन अभी तो ये उस बस्ती में भी नहीं पहुंचा, अभी तो उससे दूर था। अल्लाह ताला ने उनको क्या फरमाया था कि नाप लो दोनों तरफ का डिस्टेंस, अगर ये बुरों की बस्ती के करीब था तो फिर अजाब के फरिश्ते इसको लेकर जाएं, अगर नेकों की बस्ती के करीब था तो रहमत के फरिश्ते लेकर जाएं। तब जानते हैं आपको ये डिस्टेंस जो नेकों की बस्ती के और उसके दरमियान था वो ज्यादा था, वो अभी बुरों की बस्ती से ही निकला था, लेकिन अल्लाह ताला ने जमीन को स्ट्रेच कर दिया, वो बुरों की बस्ती से दूर कर दिया उसको और नेकों की बस्ती के करीब कर दी, और रहमत के फरिश्ते उसको ले गए। कितना अल्लाह ताला ने उसके साथ रहमत का मामला फरमाया, उसकी तौबा कितनी सच्ची थी। अभी 100 का कातिल हो गया भाई। और दूसरी तरफ मैं आपकी तवज्जो असल में इस बात की तरफ करवाना चाहती हूँ कि आपको वो हदीस भी शायद मालूम हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत एक बिल्ली की वजह से जहन्नुम में चली गई। उसने क्या किया था, उसने बिल्ली को बांध दिया था और उसको छोड़ा भी नहीं कि वो जाके खुद ही कहीं से कुछ अपने खाने का इंतजाम कर ले, उसको बांधे रखा और भूखा ही उसको मार दिया, वो भूखी रही आखिर मर गई, उसकी वजह से वो औरत जहन्नुम में एंड अप होगी। अब आप देखें एक तरफ इंसानी जान है, 100 जानों का कातिल इंसान की, जाहिर है जिंदगी बहुत कीमती है, काबा से ज्यादा हुरमत है इंसानी जान की, और दूसरी तरफ एक बिल्ली है जो एक जानवर है, और एक ही बिल्ली है, उधर 100 हैं एक इधर एक है, उधर इंसान है इधर जानवर है, आपको क्या लगता है किसका जुर्म ज्यादा संगीन है, उसका जो 100 का कातिल हो गया। लेकिन उसके लिए रहमत के फरिश्ते आ गए और ये जहन्नुम में एंड अप हुई। मेरा सवाल आपसे ये है, डिफरेंस क्या था, फर्क क्या था? ये तो आपको बहुत छोटी सी बात लगी कि यार जानवर ही था ना, उसने इसको बांधा, भर मुंह की मर गई तो क्या हो गया, चलो कुछ ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई। एक तरफ आपको 100 का कातिल नजर आता है, आपको लगता है कि ये है जिसने कबीरा गुनाह किया और एक जान नहीं ली, 100 की जाने ले ली, तो इसको तो इसके लिए तो जहन्नुम होनी चाहिए और उसके लिए तो कोई जहन्नुम नहीं होनी चाहिए। मेरे और आपके जैसे लोग फैसला थोड़ी कर रहे हैं। क्या फर्क था? दोनों की तौबा में फर्क था, दोनों की तौबा, एक ने तौबा की और ऐसी तौबा की कि वो तड़प गया और वो चल पड़ा उस रास्ते की तरफ, और उसने वो रास्ता पूरा भी नहीं किया था, अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल कर, पता नहीं उसने कितने दिल से तौबा की, पता नहीं कितना पछताता होगा। और एक है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्ली भूखी मर गई, सो व्हाट, उसने भी सोचा कि कोई बड़ी बात ही नहीं, उसने उसके ऊपर तौबा भी नहीं की। शायद उसके नजदीक कोई बड़ा जुर्म था ही नहीं, कोई ऐसा गुनाह था ही नहीं, तो वो जहन्नुम में एंड अप हुई। अब आप देखें, ये है फर्क तौबा करने का। जब इंसान पछताता है और तौबा करता है ना, तो बड़े से बड़े गुनाह भी माफ हो सकते हैं, और जब इंसान तौबा को बड़ी चीज ही नहीं समझता और गुनाह करके भी ठंडे पेटों बैठा रहता है और वो बड़े मुतमईन है कि कुछ ऐसा मैंने कौन सा इतना बड़ा कर दिया जी, इतनी भी तड़पने की मुझे क्या जरूरत है, तो छोटा गुना भी बड़ा बन सकता है, तब छोटे छोटे गुना भी बड़े हो जाते हैं। और हमें तो अपने गुनाहों की लिस्ट ही नहीं पता, हमें तो पता ही नहीं हम क्या क्या कर चुके हैं। आप देखें, जब इंसान को अपने गुनाहों का शऊर आता है ना, तो फिर कैसी तब्दीली आती है उसके अंदर। फुजैल बिन अय्याज जो थे, अपने बेटे के लिए बड़ी ही दुआ किया करते थे कि अल्लाह उसको हिदायत दे दे, तो जब अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी और वो पलट आया ना, तो उसकी तौबा कैसी तौबा थी। फिर देखें कि फुजैल बिन अय्याज ने देखा कि बेटा बाजार में है, तराजू का है जो पलड़ा जिसके ऊपर वेट रखते हैं ना, एक पे वेट रखते हैं आपको पता है, दूसरे पे सामान रखते हैं, तो जिस पे वेट रखते हैं उस पलड़े को अच्छी तरह से साफ कर रहा था। तो पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? बोला, इस पे मिट्टी की गर्द की तह लगी हुई थी, मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो तोलते हुए ये मिट्टी की तह की भी जो वेट है, इसकी वजह से कहीं गाहक के साथ ना इंसाफी ना हो जाए, उसका हक ना मारा जाए, कि आपने 1 केजी का पट्टा रखा और कितनी होगी मट्टी, एक तह मट्टी की, एक गर्द की तह का क्या वेट होगा। इतने कॉन्शियस थे कि कहीं ये ना हो कि उसका वजन बढ़ जाए जिस तरफ बट्टा रखा हुआ है, और अल्लाह ताला कयामत के दिन मुझसे सवाल करे कि तूने इसका हक इतना भी क्यों मारा था। मैं इसलिए इसको साफ कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, ये होती है जब सच्ची इस्तिग़फ़ार होती है। अल्लाह ताला ने नेकों की ये क्वालिटी बयान की है कुरान में, वबिल असहारी हुम यस्तग़फिरून, उस सहरी के बाद तौबा करते हैं, क्योंकि उनको चैन ही नहीं आता, जब सब सो जाते हैं तो वो तौबा के लिए खड़े हो जाते हैं, वो इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं अल्लाह ताला के आगे, उनको निदामत है, उनको शर्मिंदगी होती है, वो चैन से नहीं बैठते कि अच्छा इतनी दफा तौबा कर ही ली, अब माफ तो हो ही गया, माफी हो गई होगी, माफी तो मिल ही चुकी होगी, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, छोड़ो। इनका बेटा जो था, जब फिर ये उठते थे तो देखते थे कि बेटा उनसे पहले तहज्जुद के लिए खड़ा हुआ है मुसल्ले पे। तौबा करने वाले ऐसे नहीं करते कि उसके बाद वो मुतमईन होकर सो जाए, फिर भी इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, उनको कभी चैन नहीं आता कि वो कभी इस चीज़ से बेनियाज हो जाएं कि अब हमें तौबा की ज़रूरत नहीं, बस वो हमने फलां दिन में पिछले रमज़ान में कर ली थी ना, तो अब इस रमज़ान में क्या करने की ज़रूरत है, इतने बड़े तो नहीं गुनाह किए हमने इस साल, और पिछले तो मिट्टी गए होंगे, तो अब क्या फ़ायदा तौबा करने का, अब क्या तौबा ही किया जाए। नहीं, हमेशा डरते रहते हैं। अल्लाह ताला को वो लोग बहुत पसंद है जो उसका डर रखते हैं, और कुरान करीम में कितनी दफ़ा ये बात आई है ना कि जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं उनके लिए क्या है, जन्नतान है, वलीमन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान, जो अपने रब के आगे खड़े होने से डरा, यानी दुनिया में, वहां पे जाके तो सारे ही थर थर कांप रहे होंगे, दुनिया में डरा कि मुझे अपने रब के आगे हाजिरी देनी है, उसके लिए 2 जन्नतें अल्लाह ताला ने तैयार कर रखी हैं। ये डर, ये अल्लाह का खौफ जो है ना, ये इंसान के लिए बहुत ही बड़ी कीमती मता है, जिसको अल्लाह ताला का ये डर मिल जाए कि उसके आगे हाजिरी कैसे दूंगा, हिसाब किताब होगा तो मैं कैसे खड़ा होऊंगा, मैं अपने अमाल की क्या जवाबदेही दूंगा, अगर अल्लाह ताला ने मुझसे पूछ लिया कि ये गुनाह क्यों किया तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये चीज उसको रुलाती हो, ये चीज उसको खौफजदा करती हो, ये बड़ी नेमत है अगर आपको मिल जाए तो, बहुत बड़ी नेमत। क्योंकि बहुत सारे दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि वो तौबा भी नहीं करते और उनके आंसू भी नहीं आते। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरा अल्लाह नाराज हो गया ना, तो मेरे से गलती हो गई, मैं फिसल गया, मैं गुनाहों में पड़ गया, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, तब भी उसके सिवा मेरा तो कोई और रब है नहीं, मैंने उसी के पास जाना है, उसी को मनाना है, उसी को राजी करना है। तो इंसान ये सोच के बार बार मुसल्ले पे आए, हर रात वो खड़ा हो जाए, और खास तौर पे इन रातों में तो कोई रात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि हमारी बगैर कयाम किए हुए हो। अगर कभी, वैसे तो हमें रमजान के अलावा भी कोशिश करनी चाहिए कि हम तहज्जुद के लिए जागें, उठें। जो लोग नहीं कर सकते या कभी कोई रात रह जाए, तो देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को 100 आयात पढ़ ले तो उसके लिए पूरी रात की इबादत का अजर है। तो 100 आयात मैंने गिनी थी, तो अगर आप देखें कितना आसान है 100 आयात, आप सोचते होंगे बहुत ज़्यादा है, नहीं, सूरह बय्यना में 30वें पारे में सूरह बय्यना से सूरह नास तक पढ़ ले, 100 आयात से भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो 100 आयात पढ़ ले, इतना आसान है 100 आयात पढ़ना, पूरी रात की इबादत का अजर आपके लिए लिख दिया जाता है। तो ये तो हम रमज़ान के बाद भी कर सकते हैं, लिहाजा इस चीज़ को अपने लिए लिख लें कि हमने कोशिश करनी है कि हमारी पूरी हर रात का इबादत का अजर हमारे लिए लिखा जाता रहे। और इन दिनों में खास तौर पे सुन्नतों का एहतमाम जरूर करें, जो भी सुन्नतें उन पे अमल करने की कोशिश करें, जितनी भी सुन्नतें आपको पता है, चाहे वो मिसवाक करना हो, चाहे वो पूरे दिन में 12 सुन्नतें नमाज की पढ़नी हो, नमाज के साथ जो फजर से पहले 2 हैं, फिर उसके बाद फजर जोहर से पहले 4 और बाद में 2, फिर मगरिब के बाद 2, फिर इशा के बाद 2, ये बहुत आसान आसान है। सिर्फ जोहर की ही हैं जो 6 हैं, बाकी तो देखें 2-2 ही हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं है। उसके लिए जन्नत में महल तामीर होगा। और देखिए ऐसा नहीं कि जिसने सारी जिंदगी पढ़ी उसके लिए, जिस दिन आप पढ़ लेंगे उसके लिए आपके लिए जन्नत में महल तैयार हो जाएगा। तो हर दिन तैयार होगा, ये नहीं कि एक दफा होगा। अब आप कहेंगे इतने महल लेके मैंने क्या करना, चलो एक दिन ही काफी है। तो आपने जन्नत में कितना अरसा रहना है, कभी ना खत्म होने वाला टाइम। दुनिया में नहीं इंसान चाहता कि देखें आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल आप एक घर में रह लेते हैं, कहते हैं ये पुराना हो गया, देखो अब नई लोकेलिटी आई है वहां पे घर लेते हैं, वहां पे और लेटेस्ट बन रहे हैं और ऐसे हैं, फिर आप अपना घर बेच के वहां पे मूव हो जाते हैं, फिर वहां पे कुछ अरसा रहते हैं, फिर आगे। खैर दुनिया की तो जिंदगी हमारी कितनी है ही कितनी, फिर भी हम चाहते हैं कि अगले से अगला बेहतर से बेहतर घर हो। तो जन्नत में तो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी, तो क्यों ना इतने सारे महलों, कभी यहाँ जाएं कभी वहां जाएं ना, एक ही घर में क्यों रहें, कभी खैमों में है, कभी बाला खानों में है, कभी महलों के अंदर है। तो हर रोज आप अपने लिए 12 सुन्नतें करके और फिर पूरा कर सकते हैं। और देख लें, याद रखें, आज का दिन अगर गुजर गया ना, तो अब ये 12 सुन्नतें दोबारा आप पढ़ के आज के दिन का महल तो नहीं बना सकते ना। अब वो दिन गुजर गया तो गुजर गया, अब अगले दिन है कि आप बना सकते हैं। तो अगले दिन ऐसे नहीं कर सकते कि आज चलो मैं 24 पढ़ लेती हूँ, कल की भी पढ़ ली, वो नहीं, जो गुजर गया वो गया। तो अब अगर जिंदगी में नहीं पढ़ी तो अब पढ़ के तो हर दिन अपने लिए महल तामीर कर लें। और इसके भी अलावा, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आप 4 सुन्नत जोहर से पहले और 4 ही बाद में पढ़ लें, वैसे तो 2 आप पढ़ते हैं ना, अगर 4 ही आपने पढ़ ली, तो अबू दाऊद की रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जोहर से पहले 4 रकात पढ़े और जोहर के बाद 4 रकात की पाबंदी करेगा, वो आग पर हराम कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो ये भी मतलब अच्छा एक वो है कि आप 2 की जगह कम से कम रमजान में 4 पढ़ लें, और आप इशराक तो पढ़ ही रहे होंगे। अगर आप एक और काम कर लें तो आपको कितना बड़ा अजर मिल सकता है, और वो क्या है? वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए जो 4 रकत जुहर की पढ़े, यानी ये जो आप 4 पढ़ रहे हैं फर्जों से पहले, वो पढ़ ले, और चाश्त की 4 रकत पढ़ ले, उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाएगा, ये खुशखबरी दी है। तो चाश्त का वक्त कब होता है? एक तो वो है जो आप फजर पे, आपने फजर पढ़ी और उसके बाद आप सूरज निकलने के 10 से 15 मिनट बाद आपने इशराक के 2 नफल चाहे पढ़ लिए, तो आपको हज और उमरे का सवाब मिला। अब मिसाल के तौर पे आप थोड़ी देर लेट गए, सो गए, फिर आप उठे, जिस चाश्त का टाइम असल में स्टार्ट कब होता है? जब सूरज निकलने के 15 मिनट बाद से लेके जवाल से 15 मिनट पहले तक, जोहर से नहीं, जवाल से 15 मिनट पहले तक। तो यानी जिस वक्त जब सूरज जरा ज्यादा निकल आए, वो चाश्त का, अगर शुरू में पढ़ ली तो वो इशराक है। अगर थोड़ा लेट पढ़ते हैं ना, जैसे 9 बजे 10 बजे, जिस वक्त सूरज काफी ऊपर आ चुका होता, उस वक्त से लेके जवाल से 15 मिनट पहले तक का टाइम काफी टाइम होता है, और जवाल सिर्फ 12 बजे नहीं होता, जोहर से पहले होता है, कुछ पहले होता है जवाल का टाइम। उस वक्त आप उस 15 मिनट पहले तक ये टाइम खत्म हो जाता है, फिर इस वक्त आपने 4 रकात पढ़नी है, तो जन्नत में घर बन जाएगा। तो इसकी भी हम पाबंदी कर सकते हैं, और बहुत आसान है ये भी अमल। आज की जो दुआ है, ये दुआ कहा जाता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मांगा करते थे ये दुआ, और चूंकि बहुत ही प्यारी दुआ है, इसलिए क्यों ना हम भी अपनी दुआओं में इस दुआ को भी शामिल कर लें, और मेरे ख्याल हर एक की यही ख्वाहिश होगी जो इस दुआ में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने मांगा। क्या मांगते हैं? अल्लाहुम्मा जाल खैरा उमरी आखिरहू, ए अल्लाह मेरी उम्र का बेहतरीन हिस्सा, खैर उमरी, बेहतरीन हिस्सा मेरी उम्र का कौन सा बना देना जो आखिरी हिस्सा हो। वह खैरा अमली खवातिमहू, और मेरी जिंदगी का बेहतरीन अमल जो है वो आखिरी अमल को बना देना। और आपको पता है ना, इन्नमल आमालु बिल खवातीन, आमाल का दारो मदार उनके एंड पे है। अगर सारी जिंदगी नेकियां करते रहे लेकिन एंड में जाके अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ना करे बुरा कर दिया, तो सारी जिंदगी की नेकियां जाया हैं। तो बेस्ट अमल आखिरी अमल बना देना। वह खैरा अयामी योमल योमल अलका का फी, और मेरा बेहतरीन दिन वो बना देना, योम अलका का फी, कि जिस दिन मेरी तुझसे मुलाकात हो, यानी अल्लाह ताला से मुलाकात का दिन, वो मेरी जिंदगी का बेस्ट डे हो जाए। क्योंकि कुछ दिनों कुछ लोगों के लिए वो दिन बड़ी खुशी का होगा, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, और कुछ के लिए वो दिन इंतहाई रंज का होगा, क्योंकि कुछ करके नहीं आए होंगे। वुजूहुन यौमा इज़िन बासिरा भी है, अब वुजूहुन यौमा इज़िन नादिरा भी है, तो कुछ चेहरे रोशन होंगे, कुछ खुश होंगे, खुशी से तमतमा रहे होंगे, और कुछ गम से स्याह होंगे। तो अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो हमारी जिंदगी का बेहतरीन दिन बना देना, हम इतने खुश हों उस दिन। और जो आज का जिक्र है, ये वो जिक्र है कि अगर आप इस जिक्र को करके फिर कोई दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। तो ये भी मसनून अजकार में से एक जिक्र है जिसमें अल्लाह ताला की तौहीद बयान की गई है, और ये जिक्र क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब देखें, आदि तो ये दुआ जिक्र सूरह इखलास पे ही मुश्तमिल है, और पहले क्या, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नका, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ इसलिए कि तू ही है। अंत अल्लाह, तू अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई ला है ही नहीं। अल अहदु समद, तू अहद है और समद बेनियाज, अल्लदी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जब आप अल्लाह ताला की तौहीद बयान करके उससे कुछ मांगते हैं कि अल्लाह तू ही है मेरा अल्लाह और तू ही है इलाह, तेरे सिवा कोई ला नहीं, मैं इसलिए तेरे से ही सवाल करती हूँ, तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। तो ऐसे तमाम अजकार को लिख लें कि जिनके बाद दुआएं कबूल होती हैं। और आज पूरी तैयारी के साथ रात के सेशन में हमारे साथ शामिल हूँ। आज हमारा सेशन पहले से शुरू हो जाएगा, आप टाइमिंग देख सकते हैं फ्लायर पे इंशाअल्लाह ताला। तो हम आज आपसे रात में मुलाकात करेंगे। अभी तक तो हमारा दिन में सेशन होता था, तो दिन में अब सेशन नहीं होगा। जब रात को आप तैयारी करें तो मगरिब से ही, चूंकि आज भी लैलतुल कदर हो सकती है, तो मगरिब के बाद आपने गुसल करना है, खुशबू लगानी है, जैसे सलफ सालेहीन करा करते थे। अगर आपने घर में रहना है, खवातीन ने, मर्द हैं तो वो खुशबू लगा के मस्जिद जा सकते हैं। अच्छे कपड़े पहने, खुद को तैयार करें रात की इबादत के लिए, ताकि नींद ना आए। इफ्तारी को भी ज़रा हैवी ना करें कि नींद आने लगे। कम खाते थे हमारे असलाफ और गुसल करते थे, तो उनके तरीके को ही देखते हुए हम, ताकि एक्स्ट्रा फ्रेश हों, उसके साथ आप अपनी तैयारी करें और दिन के वक्त ही अपनी जगह मुकर्रर कर लें कि कहाँ पे मैंने रात को अपनी इबादत करनी है, और वहीं पे अपना जानमाज, अपनी सारी चीज़ें, अपना कुरान करीम, अपनी दुआओं की किताब, सब वहीं पे होने चाहिए, ताकि आपको बार बार उठ उठ के जाना ना पड़े। आपने कुछ अपने लवाजमात रखने हैं, कोई कॉफ़ी चाय, तो वो भी वहीं पे हो। और सिर्फ आप उस कमरे से निकलें तो उस वक्त निकलें जिस वक्त आपने वुजू करना है, बाथरूम यूज़ करना है, उसके अलावा ना जाएं। और कोशिश करें ये कमरे वो हों जो आप चूज़ करें, वो हों जिसमें बिस्तर ना हो, क्योंकि आप बिस्तर को देख देख के ही फिर इंसान जो है ना वो सोचता है कि मैं थोड़ी देर लेट ही जाऊं। और इसी तरह कपड़े भी वो ना पहने कि जो आप नाइट सूट के तौर पे पहनते हैं, कि सोने का टाइम नहीं है, ये जागने का टाइम है, ये स्पिरिचुअल फिटनेस का टाइम है, ये एग्जर्शन का टाइम है। तो इसके लिए खुद को तैयार करें कि दिन में मैंने अपने आप को तैयार करना है रात की इबादत के लिए। दिन के वक्त भी अपने कान, आंखें और जुबान, इन पे गार्ड्स बिठा दें कि ना मैंने बुरा सुनना है, ना मैंने बुरा देखना है, ना मैंने बुरा बोलना है, ताकि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे दे कि मैं रात को जागूं और मैं इबादत अच्छी कर सकूं। जो कान सुनेंगे, जो आंखें देखेंगे, जो जुबान बोलेगी, उसका दिल पे इफेक्ट होगा, दिल सख्त होगा, दिल में कोई और ख्यालात और बातें होंगी, तो ये तौफीक भी फिर नहीं मिल पाती जब दिल मरीज हो जाता है। तो इसलिए अपने दिल को बचाने के लिए इन रास्तों को साफ रखिएगा, ताकि दिल अच्छे तरीके से अल्लाह ताला की इबादत कर सके और फोकस्ड होके हमने इंशाल्लाह इबादत करनी है। हम नमाज का भी हमने सारा सीखा है, उसी तरह से हमने अपने क़याम को करना है, और जो बातें हमने नमाज की सीखी हैं उनको जहन में रखना है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है, कि जब हम खड़े में अल्लाह ताला के आगे, तो हमारा जहन वहाँ पे हो, अगली बात को नहीं सोचना कि इसके बाद मैंने ये करना है, इसके बाद ये चीज़। अक्सर हमारी नमाज में खुशू इसलिए मुतासिर होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि इसके बाद मैंने ये काम करने हैं। तो कामों से खुद को दिन में फारिग कर लें, कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने रात के लिए उठा के रखा हुआ है कि उस वक़्त मैं कर लूँगी ये, नहीं। आपने बस अपने आप को मुसल्ले के साथ जोड़ देना है रात में। तो इसके लिए तैयारी करनी है, और तैयारी दिन में ही आपकी शुरू हो जाएगी, रात को जाके नहीं करनी, तैयारी दिन में करनी है, ताकि रात आसान हो और अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना है कि मुझे अल्लाह ताला लैलतुल कदर की इबादत नसीब फरमा देना। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस इबादत को हमारे आमाल नामे में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख दे। अल्लाह ताला इसका अजर हमारे लिए महफूज कर ले और हमारे लिए बहुत आसानी कर दे, और हमसे कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे कहीं हमारी ये इबादत मुतासिर हो। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।